जीवन एक गोरख धंधा है। ऑडिबल की विशेष प्रस्तुति ओम स्वामी के विचार, ओम स्वामी की आवाज में। हैरान हो इस बात पे, तुम कौन हो, क्या हो? हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। अक्ल में जो गिर गया, ला इंतहा क्यों कर हुआ? जो समझ में आ गया, फिर खुदा क्यों कर हुआ? फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। जबकि तुझ भिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ऐ खुदा क्या है? आप ही अपना पर्दा हो, तुम एक गोरख धंधा हो।
हम आठवें प्रकरण पे पहुंच गए हैं। हमने कारणों को समझा, दुखों का घर है समझा, इच्छाओं का घर है समझा। दुख से पहले कैसे सरल जीवन से मनुष्य तैयारी कर सकता है, और दुख में आने के बाद कैसे सृजनात्मक कर्म से वो अपने दुख से बाहर आ सकता है। हमने ये जाना कि दुख शाश्वत सत्य है इस मनुष्य जीवन का। अब प्रश्न उठता है इस प्रकरण में जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं, बहुत ही एक सरल परंतु बहुत ही गहनतम बात बताऊंगा कि आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है, उसको कैसे पता चले कि मैं चरम सीमा पर पहुंच गया हूं? क्या हम उसको ये कहें कि यदि आपके मन में करुणा का भाव है तो आपने आध्यात्मिक एक पथ पर सबसे पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं? तो शायद ये सत्य न होगा, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण के जन्म में ऐसे बहुत से घटनाएं हुई हैं ऐसी, जिसमें कि शायद देखने वाले को लगे कि उन्होंने तो दया का भाव नहीं दिखाया। क्या जो व्यक्ति सदा सत्य बोले वो सिद्ध है, या ज्ञानी और एक अज्ञानी में मूल अंतर क्या होता है? इस विषय पर इस ढंग से मैंने आज से पहले शायद कभी चर्चा ना की होगी। मूल जो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है वो बड़ा सरल है। आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा ये नहीं कि आप हर समय सत्य बोल सकें, या हर समय आनंदित रह सकें, या हर समय सुखी रह सकें, या हर समय एक दया के भाव में रहें, करुणा के भाव में रहें, सहिष्णुता के साथ रहें, या एक मन में राग का भाव ना आए, द्वेष का ना आए, घृणा लज्जा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये संभव नहीं। जो आपको ऐसा वचन दे दे वो आपसे असत्य कथन कर रहा है। आध्यात्मिक पथ पर वो व्यक्ति जो सिद्ध है, उसका एक बड़ा सरल सा लक्षण होता है। वो जो उस पथ पर पहुंच चुका है, उस ऊंचाई पर, उस जगह पर जहां से वो स्वयं को देख पाए, वो आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा होती है। जब तक मनुष्य नहीं पहुंचता, तब तक वो या तो अपने बाहरी वातावरण को देखेगा, या अपने बाहरी रंग रूप को देखेगा, या वो दूसरों की ओर देखेगा। उसको किसी भी कार्य में अपनी गलती नहीं लगेगी, उसको हमेशा दूसरा व्यक्ति ही गलत लगेगा। कहते हैं एक बार यज्ञ हो रहा था, और वैदिक समय की बात है, जब भगवान महादेव और श्री विष्णु और ब्रह्मा विचरण करते थे इस पृथ्वी पर, उनके आसन लगे हुए थे, और जो विष्णु भगवान हैं वो भी पहुंचे नहीं थे। दुर्वासा मुनि परम सिद्ध थे, वो जाकर भगवान शिव के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं। भगवान शिव तो भोलेनाथ, नारद बैठे होते, कोई और बैठा होता तो शिव बोल भी देते, कहाँ बैठे हो भाई, ये दूसरे का आसन है। बोला दुर्वासा के माथे कौन लगे, छोड़ो। तो भगवान तो अपना मस्त, परंतु नारद ऋषि को क्रोध आ जाता है। उनको अच्छा नहीं लगता कि जो मेरे श्री हरि का स्थान है वहां पर आकर ये ऋषि बैठ गए हैं। शिव के साथ आपकी जगह नहीं है। उन्होंने कहा महाराज, देव ऋषि नारद ने दुर्वासा मुनि को, कि आपको नहीं लगता थोड़ा अनुचित है, आपने अपना आसन भगवान आशुतोष के पास लगा लिया है, क्योंकि यह हमारी संस्कृति नहीं कहती। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, हम अपने से बड़ों का सदा से ही मान करते आए हैं, सम्मान करते आए हैं, आदर करते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। तो दुर्वासा को क्रोध आ जाता है, बेचारे उनका चरित्र का अंकन ही कुछ ऐसा है कि हर कथा में उनको क्रोध आ जाता है, या सामने वाला उनके क्रोध से डर रहा है या उनको क्रोध आ जाएगा, तीसरी मैंने आज तक उनकी कथा पढ़ी नहीं, तो इसमें उनको क्रोध आ जाता है। क्रोध आ गया तो नारद को बोला कि ऐसा कोई है नहीं तीनों लोकों में जो मेरे साथ शास्त्रार्थ में मुझे हरा सके। तुम्हारे इस वचन के लिए तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो नारद ने कहा, यह कैसा पांडित्य है मुनि, यह कैसा ज्ञान है कि अभी तक क्रोध जो है फुंकार रहा है आपकी चेतना में, अभी तक क्षमा का भाव नहीं जागा। ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं। साथ में अपने भोलेनाथ को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। तो आप कुछ भी चाहे बुरा लगे या अच्छा, मेरे अनुसार आप भगवान भोलेनाथ के पास बैठने के अधिकारी नहीं हैं। तो ना जाने दुर्वासा को बोध होता है कैसे कि वास्तव में ही गलती तो मुझसे हो गई, कि देखा जाए तो ऐसा ज्ञान किस काम का जिसमें कि अभी भी मैं ऐसी भावनाओं से इतना जुड़ा हुआ हूं कि कुछ होते ही तुरंत मैं गिर पड़ा उस कुएं में। कि तुरंत मैं उस कुएं में जो है गिर पड़ा, और यही मूल अंतर होता है अज्ञानी और ज्ञानी में। एक सिद्ध और साधारण व्यक्ति में एक ही अंतर है, कभी विचार कर देख लेना। अज्ञानी जो है अधिकार से जीता है, ये मेरा अधिकार है। ज्ञानी जो है पात्रता से जीता है, क्योंकि यदि आप पात्र हैं तो जिस चीज के पात्र हैं वो स्वतः ही आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आज नहीं या कल हो जाए, देर सवेर हो जाए, परंतु जो पात्रता आपने हासिल नहीं की है, यदि आप अधिकार जताकर किसी चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे वो भक्ति में हो, चाहे शक्ति में हो, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, काम पर हो, कहीं पर भी, यदि अधिकार जताकर किसी चीज को लेना पड़े तो उसके लिए आप अभी तैयार नहीं हैं। ये बंदर के हाथ वो उस्तरा है कि जहां जाएगा लगा देगा। समझ नहीं है, शक्ति तो आ गई पर उसको प्रयोग करने की बुद्धि नहीं है। एक बहुत सुंदर भगवत गीता में कुछ श्लोक आते हैं जो मैं चाहता था। भगवान ने बोला है कि क्या लक्षण है उस व्यक्ति का, और उस मार्ग पर कोई भी साधक पहुंचता कैसे है? क्या जप, ध्यान, विधि विधान जो बने हैं वो आपको आध्यात्मिक पथ पर, चरम सीमा पर लेके जा सकते हैं? ये क्रिया और वो क्रिया और ये ध्यान और वो ध्यान, ये सब इतने व्यंगात्मक लगते हैं एक समय पर जब आप आगे बढ़ जाते हैं इस पथ पर, जब आपको पता चल जाता है इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये एक अज्ञानता का लक्षण होता है। तो भगवान ने बोला है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मन आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति। कौन्तेय, वो व्यक्ति जो पश्यन आत्मनि तुष्यति, जो संतुष्ट होकर स्वयं की ओर देख सकता है, जिसने अपने चित्त की वृद्धियों का रोधन कर लिया है योग के सेवन से, निरुद्धम योग सेवया, ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं खत्म नहीं होती कभी। कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना हमारे बीच में जिसको हम धारण कर सकें, पकड़ सकें, जब बार बार वही भावनाएं आकर हमको पकड़ रही हैं। किसी की आयु 30 वर्ष है, किसी की 20 है, किसी की 40 है, किसी की 50 है। जो जो युक्ति किताबों में लिखी गई है, जो जो समाज ने बताई है, उसने अब तक तो काम नहीं किया। कहीं ना कहीं तो गोरख धंधा है ना, कुछ ना कुछ तो कहीं खाली है, रिक्त है, कि बोला गया पढ़ लो, खुश हो जाओगे, अच्छे नंबर ले लो, अच्छी डिग्री कर लो, नौकरी लग जाएगी, फिर कोई चिंता नहीं। पर ऐसा तो हुआ नहीं। फिर बोला चलो विवाह कर लो, एक परिवार को स्थापित कर लो, संबंध को स्थापित कर लो, जीवन में सुख आ जाएगा। आया, पर आ जा रहा है थोड़ी देर के लिए है। बड़े हो रहे हो, संतान को उत्पन्न कर लो, जीवन को सन्मार्ग की ओर लगाओ, उससे सुख और शांति मिल जाएगी। नहीं मिली। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और बड़ा घर, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो कहां कमी रह रही है ना? कुछ तो गड़बड़ है, विचार करने वाली बात है। कम से कम मेरे जीवन में तो यही मेरा विचार रहा। जब जब कुछ भी प्राप्त किया भौतिक जगत का, तो मेरे मन में यही प्रश्न था कि अब आगे क्या? क्या केवल इसको गुणा करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जीवन में? तो भगवान ने कहा, सुखम अत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम मतिन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सितश्चलति तत्त्वतः। के जो मनुष्य योग का सेवन करता है, योग से ये मत सोच लेना कि सांस को रोकना योग हो गया, प्राणायाम योग हो गया, योग अभ्यास योग हो गया, या किसी चक्र पर ध्यान लगाना योग हो गया, या किसी प्रकार की कोई क्रिया योग हो गई। उस योग की बात नहीं कर रहा मैं या श्री कृष्ण। उन्होंने कहा है ये वो योग सेवन है, क्योंकि इससे पहले भगवान ने कहा था, युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवती दुखहा। जिस योग की बात मैं कर रहा हूं कौन्तेय, ये वो योग है जिसमें मनुष्य एक मध्यम मार्ग का जीवन जीता है। युक्ति से खाना और युक्ति से बोलना, युक्ति से सोना और युक्ति से उठना, युक्ति से धनोपार्जन करना और युक्ति से उसको खर्चना, ऐसे योग से मनुष्य के दुख का हरण होगा, ना कि किसी ऐसे हठ योग से होगा कि मैं बस ध्यान में बैठ जाऊंगा और समाधि में पहुंच जाऊंगा। वो योग का सेवन नहीं है, वो योग का दुरुपयोग है। परंतु जो मनुष्य इस योग का सेवन करता है, भगवान ने कहा सुखम अत्यंतिकम, एक अतिशय सुख की प्राप्ति वो करता है। क्यों? यतद बुद्धि ग्राह्यम मत इंद्रियम, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों से भी परे जा चुका है। इंद्रियों से परे कैसे जाता है मनुष्य? ज्ञान से और स्मृति से, जागरूकता से। इसलिए बुद्ध ने, गौतम ने अपना नाम ही बुद्ध रख लिया कि मैं जागरूक हूं। बुद्ध का अर्थ ही जागरूकता है। आप दूसरे के लिए जगह बनानी सीख जाते हो, नहीं तो अपनी ही जगह कम लगती है इंसान को। कहते हैं अब्राहम लिंकन के पास एक स्त्री गई एक बार, और यह सत्य घटना है। उसने कहा कि मेरा बेटा जो है आपकी फौज में है, अमेरिका की, और अदना सा एक फौजी था, उसमें कर्मचारी था, कि उसको आप कम से कम कर्नल बना दीजिए। लिंकन ने कहा ऐसे कैसे बना दूं उसको कर्नल? उसने कहा मैं आपसे भीख नहीं मांगने आई, मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि वो कर्नल बने। मेरे परदादा ने इस देश के लिए अपनी जान दी। मेरे दादा भी फौज में भर्ती हुए और वहीं से रिटायर हुए। मेरे पिता न्यू ऑर्लियंस में जो युद्ध हुआ था उस मोर्चे को उन्होंने संभाला और वहीं पर उनकी जान गई। मेरे पति इस देश की फौज में ही थे। तो लिंकन ने कहा आपके सारे परिवार ने इतनी अब सेवा कर ली है, किसी और को भी अवसर देना चाहिए, सारी सेवा आप ही कर लेंगे। मैं तो सोच रहा हूं उसको उस पद से भी हटा देता हूं ताकि कोई और बेचारा भर्ती हो, किसी और परिवार से कोई आए। अज्ञानी जो होता है वो एक शुभ कर्म करने के बाद सोचता है एक शुभ फल मेरा अधिकार हो गया। कर्म व्यापार की बात नहीं है, कर्म विशालता की बात है, कर्म एक सोच की बात होती है। क्योंकि स्मरण रहे, जब आप अच्छा करते हैं, कोई देखे ना देखे, दो लोग तो देख ही रहे हैं, एक आप, एक ईश्वर। यदि इन दो लोगों को मालूम है, यदि ये दो लोग देख रहे हैं, तो तीसरे का फर्क भी क्या पड़ता है? अगर दिखाने के लिए ही करना है फिर कर्म को, फिर तो नाटक कीजिए। कर्म दिखाने के लिए तो नहीं ना कर सकते, कर्म तो करने के लिए होता है। और अंत में मनुष्य के कर्म ही उसके सामने आकर स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का सामना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं होता, उसका सामना केवल और केवल उसके स्वयं के मन से होता है। मन की ही भावनाएं, मन के ही विचार, मन की ही इच्छा। जिसका अपने मन से द्वंद खत्म हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, सुख नहीं, कर्म शेष रह जाता है। सुख तो आता जाता रहेगा, ऐसा कोई कर्म नहीं जो सदा के लिए सुखदाई हो। ठंड लग रही हो और आप आग के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद उस आग से गर्मी आनी शुरू हो जाएगी, आप दूर हट जाओगे। गर्मी लग रही हो आप वातानुकूल को चला दीजिए, एसी को चला दीजिए, थोड़े समय के बाद आपको लगेगा इसको बंद कर दिया जाए या इसको कम कर दिया जाए, अब ठंडी लग रही है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो निरंतर सुख देता रहेगा, पर ऐसा जीवन अवश्य है जिसमें निरंतर सुखदाई कर्म होते रहें। वो अर्जित अर्जन है, जो वो ऐसी चीज है जो अर्जित होती रहेगी, एकत्रित होती रहेगी, इकट्ठी होती रहेगी। वो फिक्स डिपॉजिट है, वो एफडी है, जब जरूरत पड़ेगी किसी दिन बैंक में जाकर बस एक हस्ताक्षर करना है और पैसे तुरंत आपकी जेब में, पर पहले उसको अर्जित करना होगा। बिना अर्जित किए वो आ नहीं सकती। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्ये तनाधिकम ततः, उसके आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्ये तनाधिकम ततः, यस्मिन् स्तो न दुखेन गुरु नापी विचाल्यते। कि कौन्तेय, पहली अवस्था मनुष्य ने योग का सेवन करना आरंभ कर दिया है, दूसरी अवस्था उसको अत्यंत सुख की एक अनुभूति होती है, तीसरी अवस्था उस अनुभूति में वो जो व्यक्ति है दुख में विचलित नहीं होता, गुरुणा भी बहुत भारी दुख में भी विचलित नहीं होता। परीक्षा तो सारी दुख में ही है, सुख में तो कोई परीक्षा ही नहीं। किसी के घर में रोग आ जाए, किसी संतान पर विशेषतः, तो सारा जो एक भक्ति श्रद्धा भाव विश्वास होता है एक ही दिन में हिल जाता है। मनुष्य कहता है, मैं तो इतना श्रेष्ठ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव है। या तो कोई ईश्वर नहीं या वो सत्य नहीं, कहीं ना कहीं उसके खाते में भी कमियां हैं, परंतु यह संभव ही नहीं कि जीवन में दुख ना आए। उस समय बस यही मनुष्य को स्मरण रखना है कि जो मेरा दुख है ये कुछ समय के लिए है। जैसे कि एक पहली कड़ी में कहा, उसके बाद या तो दुख की आदत हो जाएगी और वो दुख दुख नहीं लगेगा, यही होता है, या आप उस दुख से ऊपर उठ जाओगे, वो चला जाएगा, चला जाएगा, ऊपर उठ जाओगे या दुख के आदि हो जाओगे, चौथा कोई रास्ता होता नहीं दुख का। ये दुख की गति है। यदि मान लीजिए आपके पास चार गाड़ियां हों, और मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास चार गाड़ियां हैं, उसके घर में आग लग जाती है, ऐसी कल्पना आपके घर में क्यों करनी, आग लग जाए तो कोई उसको बताए कि भाई आपके घर में आग लग गई है, उसका पहला प्रश्न होगा कि कोई घर में था तो नहीं, कोई जान की हानि तो नहीं हुई, नहीं, परंतु गाड़ियों को आग लग गई, फिर उसके लिए वही दुख बड़ा हो जाएगा। अच्छा, चारों को लग गई, नहीं, एक को ही लगी है, फिर वो खुश हो जाएगा, शुक्र है, शुक्र है कि एक को ही लगी है। अगर उसको शुरू में यही बताया जाए कि आपकी एक गाड़ी को आग लग गई, तो उसको बड़ा भारी दुख प्रतीत होगा। तो दुख की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। बुद्ध ने कहा था, सत्य सापेक्ष होता है, ट्रूथ इज रिलेटिव, पूर्ण नहीं होता। वही सत्य मनुष्य को बड़ा या छोटा लगता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक दुकान पर कार्ड लेने जाता है, कहता है कि नए साल पर कुछ अच्छा देना चाहता हूं, मेरी एक सहेली है, एक दोस्त है, उसको देना है, क्या कैसा कार्ड चाहिए? उसने कहा, मुलन का, जिस पे लिखा हो कि मैं जितना प्रेम तुम्हें करता हूं इतना कभी किसी को नहीं किया, कुछ ऐसा लिखा हुआ। हाँ, उसने कहा, कुदरती बिल्कुल ऐसा ही एक कार्ड है, 6 दे दो। मुल्ला ने कहा, 6 दे दो, 6 को देने हैं। सत्य, मान लीजिए आपको ऐसा कार्ड मिले, आप कितने खुश होंगे, पता चले किसी और को भी ऐसा मिला है, आपका सत्य नहीं बदला, पर आपको अपना सत्य अब सुंदर नहीं लग रहा। सत्य सापेक्ष है, दुख भी सापेक्ष होता है। मेरा दुख कितना बड़ा है, दुख अपने आप में बड़ा या छोटा नहीं होता, वो निर्भर करता है कि उसके साथ, उससे पहले या उसके आने वाला दुख कितना बड़ा होगा। क्योंकि एक बड़ी सुंदर बात है, सुख के आने से दुख की स्मृति नहीं जाती। मान लीजिए आपके, आप कोई व्यापार करते हैं, चार ग्राहक आपके पास आते हैं, तीन से आप 150 गुना मुनाफा ले लेते हैं, एक जो है आपको बेवकूफ बनाकर लूट के चला जाता है, उसको 2 लाख का माल दिया, उससे रकम नहीं आई, तीन से आपने 6 लाख कमा लिया, आप उस 2 लाख को ना भूल पाओगे जो आ सकता था पर नहीं आया। सुख के आने से दुख नहीं भूलता मनुष्य, बड़ा दुख आने से छोटा दुख भूलता है। यह दुख की गति है, यह दुख की प्रवृत्ति है, दुख की प्रकृति है। तो भगवान ने कहा जो भारी दुख में भी विचलित ना हो, क्योंकि आते रहेंगे, कोई रास्ता है नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए कोई अच्छी खबर है नहीं, दुख जो है आते रहेंगे। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन युक्तव्य योक्तव्य योग अनिर्विन्न चेतसा। भगवान ने कहा है ये योग और संयोग और वियोग का दुख तो लगा रहेगा कौन तय, शायद इस बात की प्रतीति करना थोड़ा कठिन हो जाए, परंतु सोचिए साक्षात श्री कृष्ण एक समय पर इस पृथ्वी पर चले, महाविष्णु का अवतार, अपने मुखारविंद से उन्होंने अर्जुन को कैसा ज्ञान दिया, वो वेद व्यास के कृपा प्रसाद से हम उसको आज भी पढ़ सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं। यदि भगवान, जहां जहां भगवद गीता में भगवान ने बोला है, मां हमेशा श्री भगवान उवाच लिखाया है, कहीं श्री कृष्ण उवाच लिखा नहीं आया, अर्जुन ने बोला तो अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र ने बोला तो धृतराष्ट्र उवाच, संजय ने बोला तो संजय उवाच, जहां जहां कृष्ण ने बोला श्री भगवान उवाच। कितने परम भाग्यशाली हैं इस भूमि पर पैदा हुए लोग कि हमारे पास वो ज्ञान है जो साक्षात योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यथ स्वयं, जो साक्षात भगवान ने अपने मुखारविंद से बोला। तो भगवान ने कहा अर्जुन योगो अनिर्विन्न चेतसा, मनुष्य को अपने जीवन में आशा और उत्साह का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अनिर्विन्न अर्थात अनुत्साह, नकारात्मक भावना से कर्म को नहीं करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्योंकि कर्म का ही करने का अधिकार है हमारे को, कि जो भी कर रहे हैं प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न वदन होकर, खुश होकर जिस कर्म को किया जाए तो अपने आप प्रकृति की ओर से प्राप्ति की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है, अन्यथा वही ढाक के तीन पात। मुल्ला ने कहा अपने दोस्त से, मैं एक ऐसी जासूसी वाली फिल्म बना रहा हूं जो तहलका मचा के रख देगी पूरे संसार में, कोई उसका रहस्य खोज ही नहीं पाएगा, लोग हैरान परेशान हो जाएंगे देखते देखते। अच्छा, उसके दोस्त ने कहा क्या नाम है उसका? उसने कहा कि उस फिल्म का नाम मैंने रखा है भारतीय जाट की परंपरा। उसने कहा इसमें तो कुछ मुझे जासूसी वाला लगता नहीं, ये तहलका कैसे मचाएगी? बोला यही तो बात है, ना उसमें कोई भारतीय है ना उसमें कोई जाट है, जो बेचारा देखने बैठा है वो अंत तक यही सोचता रहेगा कब ये रहस्य खुलेगा, कब ये रहस्य खुलेगा कि इसमें कोई भारतीय आएगा या कोई जाट आएगा। जीवन में ये जो फिल्म है ना, जीवन की जो चलचित्र चल रहा है निरंतर, ये वो टेप है जो घूमती रहती है, अंत नहीं। ये जो चल रहा है ना, इसमें यदि तहलका डालने का सामान नहीं है तो तहलका कहां से मचेगा ना, कोहराम मचेगा। जीवन आपके हाथ में है, पक्षी की उस गर्दन को मरोड़ना है जो हाथों में लिया हुआ है, या उसके सुंदर गान को सुनना है, या अपने हाथों को खोलकर उसको उड़ा देना है, ये कोई आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता, ये आपके हाथ में है। जिस दिन मनुष्य सीख जाए कि मुझे मेरे जीवन का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, खुश रहना है तो ये मेरी समस्या है, दुखी रहना है तो ये मेरी कमी है, उस दिन आप एक ऐसी छलांग लगा लोगे आध्यात्मिक पथ पर कि आपको किसी भी प्रकार से किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अगले प्रकरण में हम इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्या है जिससे उस पथ पर हम और तीव्रता से बढ़ सकते हैं। आज जाना कि उसका लक्षण क्या होता है, कि दुख में मनुष्य घबराए ना, एक फक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाए, पर उस प्रवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाए उस पर विचार करेंगे अगली बार। अब अंत में बस एक ही बोलना चाहूंगा, हैरान हूं इस बात पे तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो, अकल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है सिरा मिलता नहीं, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है, आप ही अपना पर्दा हो तुम एक गोरख धंधा हो। इस प्रकरण में